ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक बड़ा ही मधुर प्यारा गीत सुना। इस गीत के शब्द आपके कानों में भी गूंजे होंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। आत्मा अपने आप से बात कर रही है, अपनी ही आत्मा को कह रही है कि ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। और उस मिलन से क्या होगा उसका अगला वाक्य है, परमानंद का अनुभव कर ले तू हो जा मन में मगन। वास्तव में यही राजयोग है। राजयोग से संबंधित आपके दो सत्र हो चुके हैं। आज प्रातःकाल आपको योगी की पहचान कराई गई। उसके बाद योगेश्वर की पहचान कराई गई। मैं आत्मा योगी हूं, जिसको भी मैं याद करती हूं उसके साथ मेरा योग है। परंतु जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब हम राजयोगी बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है, उसका क्या स्वरूप है, वो कहाँ है? परमात्मा कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपना परिचय खुद ही देता हूँ। तो परमात्मा ने अपनी पहचान हमें खुद दी है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ और मैं जब जब इस संसार में धर्म ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। कई लोग ब्रह्मा कुमारियां क्या बताती है इतना पता नहीं है, तो वो क्या समझते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां, इनका जो गुरु है ना, उनको ये परमात्मा भगवान ईश्वर मानते होंगे, क्योंकि ऐसे ही कई मानते हैं अपने अपने गुरु के बारे में, यही हमारे लिए भगवान है। लेकिन वास्तव में कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता है। क्यों, उसका भी आपको कारण बताया आज सुबह। तो कई फिर पूछते ये जो जिनका फोटो आप रखते ये कौन है, इनको आप भगवान नहीं मानते हो? हम कहते हैं इनको भगवान तो क्या, हम गुरु भी नहीं मानते हैं, गुरु भी नहीं है हमारे। परमात्मा कौन है वो तो पहचान देते ही हैं कि वो ज्योति स्वरूप है, जिसको सभी धर्म पिताओं ने भी याद किया। परंतु इनको हम गुरु भी नहीं मानते। सतगुरु एक ही परमात्मा है, उसको ही याद करना है। तो फिर कई कहते इनका फोटो क्यों रखा है? वास्तव में ये हमारे अलौकिक पिता हैं। आपके घर में आपके पिता का फोटो होगा, दादा का भी फोटो होगा, तो हमारे अलौकिक पिता हैं। लौकिक पिता का फोटो तो घर में रखते हैं, कई देवों का भी फोटो रखते हैं, अपने गुरु का भी रखते हैं, लेकिन हम इनको अलौकिक पिता कहते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा परमात्मा ने अपनी पहचान दी है। और ये पहचान कैसे दी वो हम आपको कल शाम का जो विषय है उसमें बताऊंगी। पर क्या दी वो आपको बताया आज। तो जब हमें यह पहचान मिली मैं आत्मा योगी हूं और उस योगेश्वर से योग लगाना है, मिलन मनाना है, तो फिर उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है। कोई भी कार्य करते उसका कुछ आधार बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो भी आधार चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। हर चीज में कुछ आधार होता है, फिर वो कार्य करने की विधि होती है। तो राजयोग का भी कुछ आधार है, कुछ विधि है। अब क्या है वो हम आज देखेंगे। तो वैसे देखा जाए राजयोग, इसको हम और शब्दों में जो आज की कॉमन भाषा है उसको, उसमें हम इसको मेडिटेशन भी कह सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन के नाम से आज बहुत सारे मंतव्य हैं। क्या है मेडिटेशन? जैसे परमात्मा के बारे में कहते हैं जितने मुख उतनी बातें, इसी प्रकार मेडिटेशन के बारे में भी जितने मुख उतनी बातें, हर एक अपना अपना रूप बताता है मेडिटेशन का। तो आज का जो इंसान है वो तो मुंह गया है कि आखिर मेडिटेशन हम किसे कहते हैं। कई समझते हैं कि इसमें हमें अपने विचारों को शून्य करना पड़ता है, कुछ भी नहीं सोचना है, चित्तवृत्ति निरोध के नाम से समझते हैं जो भी आत्मा की चेतनता है, हमारी संकल्प शक्ति है, उसको शून्य बना देना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ब्लैंक बनना है। वास्तव में ये कोई मेडिटेशन नहीं है। और ब्लैंक हम कितना समय मन को बना सकते हैं। मान लीजिए कोई कहे मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, बस कुछ नहीं, एक सेकेंड दो सेकेंड चलो बहुत अपने को दबाए और फिर कुछ आए मन में, फिर कहे मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, तो ये भी तो सोच है ना, मुझे कुछ नहीं सोचना है, ये सोच नहीं है। भले और बातें नहीं सोचते पर मुझे नहीं सोचना है, ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है ना। तो मन में ही यह कह रहे मुझे कुछ नहीं सोचना है। अभी भी आपको बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ बातें अवॉइड करनी होती, मुझे नहीं सोचना है, मेरा कोई मतलब नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी सोच चलता है क्यों किया, क्या मतलब है, कैसे किया, कहा क्या, क्यों, कौन, कहां, कैसे, ये प्रश्न ही चलते रहते हैं मन में। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं शून्य करना, आप कितना समय शून्य कर सकेंगे, मन में विचार तो आएंगे पर क्या विचार मन में लाने हैं वो जरूर मेडिटेशन सिखाता है। कई फिर समझते इसके लिए फिर मन में दबाव डालना पड़ता है, क्या सोचना है, क्या सोचना है, क्या सोचना है, दबाव भी नहीं है, बस सहज है। लेकिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसका जो आधार है वो ही पता नहीं है, फिर उसकी विधि सही रूप से नहीं जानते तो लगता है जैसे दबाव कर रहे हैं। कई जो आधार समझते चलो कोई मंत्र जाप करेंगे ये हमारा आधार है, माला फेरते हैं, कोई मूर्ति सामने रख करके वो आधार बनाते हैं। अब अगर हम माला मूर्ति मंत्र ये जो हम आधार बनाते हैं, पूजा करते पाठ करते ये आधार बनाते हैं ताकि मन ईश्वर में लग जाए, पर अक्सर करके देखा गया है, सबका यह अनुभव होगा कि मुख पर मंत्र होगा, हाथ में माला भी होगी, सामने आंखों की मूर्ति भी होगी, ये सब आधार हैं, फिर भी मन रहता है उस मंत्र में या माला में या मूर्ति में, मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटक रहा है। क्योंकि मन तो सूक्ष्म चीज है ना, ये मंत्र माला मूर्ति ये तो स्थूल चीज है। अब वो स्थूल चीज सूक्ष्म का आधार कैसे बन सकती है? सूक्ष्म को सूक्ष्म ही आधार चाहिए। आप किसी को याद करते हो तो क्या उसका चित्र सामने रखते तभी याद करते हो, कैसे करते हो? ऐसे चित्र सामने तभी याद करेंगे क्या? आपकी माँ, आपका पिता, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बहू, मतलब जो भी आपके है। और तो मन अपने आप चला जाता है, क्यों गया, क्या आधार था? क्योंकि आपका संबंध है, आपका प्यार है, कुछ आपको उससे प्राप्ति है, यानी कुछ आधार हो तो मन अपने आप चला जाता है। अब दुनिया में करोड़ों इंसान है, हम जानते भी नहीं है। अभी दो दिन से आपने अखबार नहीं पढ़ी, न्यूज नहीं सुनी, टीवी नहीं देखी, चलो आपने कल कह दिया घर में हमको फोन नहीं करना, पता नहीं कितनों ने कहा भी और कितनों नहीं भी कहा होगा, फिर भी चलो फोन नहीं आया तो भी मन तो जाएगा, पता नहीं ऐसा कोई फोन ही नहीं आया, क्योंकि संबंध तो है ना। परंतु जिन बातों का आप जानते ही नहीं है, अभी क्या कितनी घटनाएं घटी होगी पता ही नहीं है, नो न्यूज गुड न्यूज नहीं मालूम, तो मन जाएगा क्यों? परंतु समझो जैसे फोन आया, अरे क्या हुआ, क्यों फोन किया, क्या बात है, तो कुछ न्यूज सुनाई तो एकदम मन चला गया न चाहते हुए भी। तो मन कहां कहां जाता है, ये स्थूल आधार नहीं चाहिए मन को। अगर स्थूल आधार लेते हैं तो चलो मुख को आधार मिला, उंगलियों को आधार मिला, मंत्र जाप किया, माला फेरी, आंखों को आधार मिला, पर मन को नहीं मिला। मन तो फिर भी भटक सकता है, तो मन को आधार चाहिए। तो इसीलिए कोई दबाव डालने की बात नहीं, हम स्थूल आधार लेते तभी दबाव डालना पड़ता है, अगर वो सूक्ष्म आधार बना तो मन तो अपने आप जाएगा। फिर कई समस्या, मन तो बहुत चंचल है इसलिए हम मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को भी तो याद तो करते, तो वो भी मेडिटेशन भी एक याद ही है ना, क्यों नहीं कर सकते? परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, इसलिए समस्या मैं नहीं कर सकता। ज्ञान मिले तो क्यों नहीं कर सकते? फिर कई समस्या, इसके लिए कोई आसन लगाने पड़ते, मैं तो ये पद्मासन नहीं कर सकता हूं तो कैसे मैं मेडिटेशन करूं, पद्मासन से ही मेडिटेशन होता। हम कहते हैं वो भी जरूरत नहीं, आप पद्म जैसा जीवन बनाओ, कमल फूल समान जीवन बनाओ, बहुत सुंदर मेडिटेशन आप कर सकेंगे। फिर कई समझते हैं कि मेडिटेशन के लिए तो चारों तरफ का वातावरण भी एकांत चाहिए तभी कर सकता हूं, शोरगुल में मैं कैसे कर सकता हूं, बहुत आवाज है मेरे घर में, मेरे दफ्तर में, मैं नहीं कर सकता हूं, बहुत आवाज बहुत है। हम कहते हैं आवाज भले कितना भी हो, आप किसी गहरी याद में बैठे हैं, मान लो चारों तरफ शोरगुल है, बच्चे शोरगुल कर रहे, आवाज है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप तो उसी ख्यालों में खोए हुए हो। तो आवाज भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है मेडिटेशन को। हाँ, ज्ञान सुनते समय आवाज है तो वो शब्द कैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहते हैं हाँ मोबाइल बंद रखो, बच्चे आवाज न करे, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे ना, वो उनका आवाज जरा स्ट्रांग है तो वो जो आप सुन रहे हैं भले स्पीकर से तो वो कैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहते हैं क्या ज्ञान के समय, क्लास के समय कोई आवाज ना हो। पर आप घर में मेडिटेशन करें, भले आवाज कर रहे हैं बच्चे तो भी क्या, आपका ध्यान हटे नहीं। फिर कई समझ इसके लिए तो फिर हाँ अपने श्वास पर हमको ध्यान केंद्रित करना होगा। हम कहते हैं श्वास तो ये शारीरिक प्रक्रिया है, उस पर ध्यान करना, कैसे जा रहा है, कैसे रोक रहे, कैसे निकल रहा है, ये थोड़ी मेडिटेशन है। चलो प्राणायाम करते ये अच्छी बात है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्राणायाम ही मेडिटेशन है ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर कई कहते हैं कि अच्छा इस अच्छा तो लगता है लेकिन जल्दी ऊब जाते हैं। क्यों ऊब जाते हैं? क्योंकि मंत्र मिला, मान लो ओम नमो शिवाय का जाप मिला और हमें कहा गया कि 1,00,000 बार ओम नमो शिवाय का जाप करना है। अब आप कहेंगे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, मतलब जाप करते रहे, 1,00,000 तो बहुत बड़ी संख्या है, 100,000 1,00,000 बनता है, तो 100 के बाद आप नंबर नोट करेंगे, 100 हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000, 50,000, फिर 1,00,000, तो 1,00,000 होगा, वो पूरा हुआ, बाप रे यहाँ बहुत हो गया, बोर हो गए। लेकिन ये थोड़ी मेडिटेशन है, क्योंकि मान लीजिए आपने ओम नमो शिवाय का भी जाप किया पर शिव से तो योग लगा नहीं, वो गिनती से जरूर योग लगा। कितना बार हो चुका है, 10 बार, 100 बार, 50,000 गिनती कर रहे हैं, तो योग बना संबंध, तो संबंध आपका गिनती के साथ हुआ, न कि ईश्वर के साथ हुआ, न कि शिव के साथ हुआ। शिव के साथ तब योग हो जब पहले आत्मा का ज्ञान हो, क्योंकि शिव का संबंध आत्मा के साथ है, परमात्मा का संबंध आत्मा के साथ है। तो आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, शिव का पूरा परिचय हो, संबंध हो, तभी तो मन जाएगा उसमें। इसीलिए बोर हो जाते जल्दी, क्योंकि मन को तो सहज काम मिला नहीं। और मेडिटेशन में तो हमारी क्रिएटिविटी है, एक रचनात्मकता है, नई नई सोच है, जिस सोच की गहराई में हम जा सकते, पर उसके लिए कुछ तो मसाला चाहिए ना, तथ्य चाहिए, कुछ सार चाहिए, विस्तार भी चाहिए, मनन चिंतन भी चाहिए। तो मेडिटेशन में ये सब बातें चाहिए, अब वो न होने कारण बोर हो जाते हैं। फिर कई समय से तो बड़ा मुश्किल है, हम कहते हैं इनसे सहज काम कुछ और है ही नहीं, मुश्किल तो कोई बात ही नहीं। तो क्या है मेडिटेशन, क्या है राजयोग? स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये है राजयोग। गीता में बहुत सुंदर शब्दों में है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, देह के सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। यही मेडिटेशन है। अब कैसे वो करें, उसके लिए आत्मा निश्चय चाहिए, क्योंकि ये देह के सब धर्म त्याग दें, तब तक मेडिटेशन नहीं होगा जब तक देह और देह के सब धर्मों को त्यागा नहीं है। और फिर परमात्मा के यथार्थ रूप को पहचान करके उनको याद करना। अब उनका यथार्थ रूप क्या है उसको ध्यान में रखते हुए उसका ध्यान करना। तो इसको हम आगे समझेंगे, जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है। आत्मा परमात्मा की संतान है, हम प्रार्थना यही करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पितु मात सहायक स्वामी सखा। भारत में परमात्मा को मात पिता के रूप में हम याद करते हैं। सभी धर्मों में कुछ न कुछ रूप है, भले क्रिश्चियनिटी में गॉड को फादर मानते हैं, मदर को, फिर मेरी को मानेंगे, इस्लाम धर्म में उस हिसाब से मात पिता नहीं कहेंगे पर मालिक तो कहेंगे ना, मालिक है हमारे, रचयिता है, तो पिता ही हुआ, भले वो उस रूप से न भी माने। लेकिन अब उसको हम कैसे समझें, इसीलिए परमात्मा अपनी पहचान खुद ही देता है। बच्चा कैसे पिता को पहचानेगा जब तक पिता खुद अपनी पहचान बच्चे को न दे कि मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता जानता, बच्चा क्या जाने। तो हम आत्माएं खुद को भी भूल गई, परमात्मा को भी भूल गई। अब परमात्मा ने अपनी भी पहचान दी, हमारी भी पहचान दी। अब उसके लिए हमें कहते हैं कि अब मुझे याद करो। अब उसकी उसका आधार क्या है, मन को सूक्ष्म आधार कौन से चाहिए याद करने के लिए। करोड़ों इंसान हो लेकिन सब में मन क्यों नहीं जाता, क्योंकि पहचान ही नहीं है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पहचान है नहीं, भले आपके पास में दूसरी सीट पर बैठा है, आप बातचीत थोड़ी करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वर्सेशन जब शुरू करते बातचीत, तो यही पूछेंगे, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, ऐसे पूछते हैं ना। फिर उससे आपका संवाद शुरू हो जाता है, फिर वो आपसे पूछेंगे, फिर नजदीक आएंगे, फिर एक दो से कार्ड एक्सचेंज करेंगे, और अगर इंजीनियर इंजीनियर से मिला तो और नजदीक जाएंगे, डॉक्टर डॉक्टर से मिला तो और नजदीक जाएंगे, एक धर्म के मिले तो और नजदीक जाएंगे, एक भाषा के मिले तो और नजदीक जाएंगे, बाकी नहीं तो ठीक है, परिचय मिला पूरा हो गया। और मान लीजिए परिचय लेते लेते कोई संबंध निकल आया, कोई मामी का, चाचे का, कोई ससुराल वालों का, कुछ और कोई बड़ा दूर का ही रिश्ता निकल आया, या एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गांव में रहते थे, कुछ सिमिलैरिटी, कुछ समानता, कोई संबंध निकला, इतनी खुशी होती, अरे तुम तो मेरे ही भाई हो, सीधा ही उनसे गले भी मिल लेंगे। तो पहला जो आधार है मन को कहीं जाने का, वो है परिचय। फिर परिचय के साथ साथ अगर संबंध निकल आया तो और गहराई में हम जाएंगे, फिर और संबंध जोड़ देंगे। तो योग का या मन जाने के लिए ये चार मूल आधार है, परिचय, संबंध, फिर उनसे स्नेह हो जाता है ना, प्यार तो हो जाता है ना, क्योंकि बहुत कुछ आपस में मेल होता है तो स्नेह भी हो जाता है, फिर उनसे कुछ प्राप्ति भी हुई तो और भी मन लग जाता है। और इस आधार पर हम कहते हैं कि तीन प्रकार की यादें होती है। एक होती है वो याद जो हम करते हैं, दूसरी याद वो होती है जो आती है, तीसरी याद वो होती है जो सताती है। देखिए तीनों में हम याद ही कहते हैं, उसकी याद बहुत आ रही है, हम कहेंगे आज मैंने उसको बहुत याद किया। याद आना, याद करना, दोनों में अंतर है या एक ही बात है? अंतर है या नहीं, क्या अंतर है? या दो प्रकार है कहने का, बात एक ही है कि याद कर रहे हैं या याद आ रही है, अंतर है। याद करते कब है पता है? समझो हम किसी व्यक्ति को बहुत याद कर रहे हैं और मान लो वो आ गया, पहुंच गया, अरे अच्छा हुआ आप या आ गए, अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे, आप ऐसे कहेंगे, वो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? वो पूछेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, क्या काम था, क्यों याद कर रहे थे? क्योंकि काम के बिना थोड़ी याद करते, कोई काम होगा तभी याद करते हैं। आप कहेंगे अरे ये बात थी ना, मतलब ऐसी बात थी तो हमने सोचा आप हमें ये मदद कर सकेंगे, आप ये बता सकेंगे। मानो उस याद किसको करते हैं, जिससे कुछ प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है तभी याद करते हैं। तो परमात्मा को भी हमें कुछ चाहिए तभी याद करते हैं, हे भगवान शक्ति दो, वैसे याद नहीं करते। इसीलिए कबीर का दोहा है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब प्राप्ति चाहिए, ईश्वर से कुछ चाहिए, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन उसके बाद का दोहा वाक्य और सुंदर है, पर जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। क्योंकि सुख में भी अगर उसकी याद है, अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ है मुझे ईश्वर का दिया हुआ है, तो उसकी याद तो हर वक्त आएगी, ये किसका दिया हुआ है? बच्चा पैदा हुआ किस कहेंगे? भगवान ने दिया। ये कुछ मिला? भगवान ने दिया। तो भगवान ने हमें दिया तो हर वक्त उसकी याद आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? करना चाहिए या नहीं? चलो करना चाहिए, क्योंकि किसकी चीज है इस संसार में? हर चीज अमानत है मेरे पास, सब ईश्वर का है। इसलिए तो आरती में हम कहते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत प्यार से हम आरती में ये शब्द गाते हैं। तो आरती के समय हे भगवान क्या लागे मेरा, सब तेरा, और बाहर आए ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा, तेरा भी मेरा, मेरे हाथ में लगा। चप्पल भी चोरी हो जाते हैं ना, वही दूसरे का पहन लिया, जानबूझ के भी पहन लेते, नया नया, पुराना अपना छोड़ देंगे, तो तेरा भी मेरा हो गया ना। और जो चप्पल छोड़ के आया उसको डर लगता है मेरा चप्पल चोरी ना हो जाए, ऐसे भी होता है। तो सब कुछ तेरा, ईश्वर का वो तो भूल जाता है, तेरा भी मेरा कह देते हैं, देखो कितना अंतर पड़ जाता है। तो अगर हम अपने विचारों में ये परिवर्तन ला सके, ये सब ईश्वर का है। इसलिए एक बहुत सुंदर कहावत है इंग्लिश में, व्हाट यू हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, ईश्वर की सौगात है आपके लिए, या मानो अमानत है। क्योंकि इस संसार में आप आए हैं कुछ भी लेके नहीं आए, ईश्वर की ये रचना है, ये संसार है, ईश्वर ने आपको दिया उसी का है. What you have is God's gift to you. And what you make of it, आप इनसे क्या करते हैं, will be your gift to God. Because आप वापस तो लेके नहीं जाएंगे, वो ईश्वर को आप वापस देंगे. आप तो खुद तो नहीं लेके जाएंगे कहीं भी, न ले आए हैं न ले जाएंगे. वो कोई और उसको यूज करेगा, आप तो चले गए. इस पर कई हंसी के चुटकुले भी सुनाते हैं. कोई बहुत बड़ा व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उनकी यात्रा, शमशान यात्रा, अंतिम यात्रा में बहुत भाग लेते हैं. उस समय बड़ा शमशानी वैराग्य आता है, चला गया, इतना मकान, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतना धन, क्या वैभव, सब कुछ छोड़ के चला गया. एक दिन हम भी चले जाएंगे, ऐसे ही कहते ना, एक दिन हम भी चले जाएंगे, ऐसे ही हमारा भी सब यहीं रह जाना है, कुछ नहीं चलेगा साथ में. तो ये सोच जब शमशान तक जाते हैं तो ये सोच चलते हैं, अब संस्कार कर लिया, पूरा हो गया, वापस लौटते हैं, अब विचार बदलते. इसको शमशानी वैराग्य कहते हैं ना. वापस आते हैं तो सोचने लगते हैं, अब वो तो चला गया, वो तो वापस आएगा नहीं, पर मैं तो हूं ना, मैं उसका भांजा हूं, भतीजा हूं, पोतरा हूं, फलाना हूं, ये हूं, भाई हूं, मामा हूं, चाचा हूं, तो मेरा भी तो हक लगता है, कुछ तो हक लगता है. अभी क्या विल करके गया है वो देखना है. मानो जब जा रहे हैं तो सब छोड़ चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, वापस आए तो ये नहीं कि क्या ले गया, फिर आता क्या क्या छोड़ के गया. क्या ले गया वो तो भूल गया, लेकिन ले तो नहीं गया, अभी छोड़ के गया तो मैं तो जिंदा हूं ना, तो मुझे तो चाहिए. तो क्या है कि मन ईश्वर में तब लगे जब हम हर वक्त ये महसूस करें कि उसका दिया हुआ है, केवल कहने तक नहीं. तो मन सहज लगेगा, प्राप्ति जो है वो ईश्वर की दी हुई है, तो हम और कुछ नहीं मांगेंगे, हम धन्यवाद ही करेंगे ईश्वर को, हर वक्त धन्यवाद करेंगे. तो हम जिसकी मानो जिसको याद करते वो प्राप्ति के आधार पर है, फिर याद आती है वो स्नेह के आधार पर होता है. अब वो व्यक्ति संसार से चला गया लेकिन इतना प्यार था कि हम उसको भूल नहीं सकते हैं. कई कहते हैं बेबी भूल जाओ, अभी तो वापस तो आना नहीं है, भूल जाओ. कैसे भूले, हम भुला नहीं सकते, उनकी याद आती रहती है, याद तक ही कहेंगे सताती रहती है. तो याद किसकी आती है या सताती, जिसे बहुत प्यार है. अब परमात्मा की याद केवल आए, सताए, करे, इनसे और ऊंचे चले जाओ. इतना स्नेह हो ईश्वर से, इतनी उनसे प्राप्ति का अनुभव हो, इतना उनसे घनिष्ठ संबंध हो, जो हम कहते हैं ना, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ तो मेरे हो. तो इसलिए केवल आए या करे या सताए की बात नहीं है, सताने का प्रश्न ही नहीं है. उनको आप अपने से दूर करते क्यों, जो सताए याद, वो तो अविनाशी है, आप भी अविनाशी हो. तो इसको हम चौथे प्रकार की याद कहते हैं, समाए, उनकी याद में समाए. जिसको ही कह दिया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है. ये विलीनता की अवस्था, ये मेडिटेशन की अवस्था है. कई समझे आत्मा परमात्मा में समा गई, बूंद सागर में समा गए. तो ये आत्मा बूंद के समान, परमात्मा सागर के समान, कोई इस प्रकार से स्थूल रीति से समाने की बात नहीं है, क्योंकि न आत्मा का विनाश होता न परमात्मा का विनाश होता है, दोनों ही ज्योति स्वरूप है. तो इसीलिए कोई स्थूल रूप में समाने की बात नहीं है, वो अविनाशी, अजर अमर अविनाशी. तो अगर समा गई तो विनाश हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया. लेकिन उनकी याद में, उनके प्रेम में खो जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इन लव. यू आर लॉस्ट वेन यू आर इन लव. आजकल दुनिया में इस शब्द को किस प्रकार यूज करते हैं, फॉल इन लव. किसे प्यार हो गया तो इंग्लिश में कहते ये फॉलन इन लव, गिरते ही हैं. कोई देहधारी से प्यार रखा, दिल दिया तो दर्द ही लिया, है ना, इसलिए कहते दिल दिया दर्द लिया. कई कहते नहीं, दिल में तो भगवान बैठा है. परंतु अगर भगवान को आपने दिल में जगह दी तो याद रखना, किसी और को नहीं दे सकते हो। अगर अनेकों को दिल में जगह दी और भगवान को भी देने की कोशिश की तो दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, वही हालत हो जाएगी, दर्द ही मिलेगा। और अगर भगवान को आपने दिल दिया तो इतनी आप, इतना आपका दिल मजबूत हो जाएगा जो कोई इसको दर्द दिला नहीं सकेगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन भगवान को दिल दे के देखो, केवल कहो नहीं हनुमान ने दिल में भगवान को जगह दी, लेकिन दिल देना माना इतनी प्रीत हो ईश्वर के साथ, और जिससे प्रीत होती है उसके ऊपर तो न्योछावर होना होता है, और वो दाता अपने आप देता है, मांगना भी नहीं पड़ता है, मांगते थोड़ी है। तो इसीलिए परमात्मा की याद में ये चार आधार अगर हो सही रूप से, उसकी पूरी पहचान हो वो कौन है, उनसे ही मेरा संबंध है, उनसे ही सच्चा स्नेह हो, उनसे ही प्राप्ति हो। अब इसको और आधार, इसको और देखेंगे, इसकी विधि क्या है उसकी, तो विधि किस प्रकार की हम देखेंगे। आत्मा और परमात्मा की पहचान, आत्मा परमात्मा से संबंध, आत्मा का परमात्मा से स्नेह, आत्मा को परमात्मा से प्राप्ति करनी है, उनसे ही प्राप्ति है। अब ये चार आधार समझने के बाद हम पहले परिचय देंगे, पहचान देंगे, आत्मा और परमात्मा की पहचान दोनों का फिर सार बताएंगे, आत्मा की पहचान परमात्मा की पहचान का। आज सुबह आपको प्राप्त हुआ कि मैं एक आत्मा, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं। आत्मा का साक्षात्कार एक सितारे के रूप में होता है, ये आंखें नहीं देख सकती, इसलिए ज्योति बिंदु कहते हैं। आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का स्वरूप है। ये सात मूल गुण, इसमें सारे गुण समाये हुए हैं, जितने भी वैल्यूज है, फैमिली वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज, जो भी हम कहते हैं, ये सात गुणों में समाये हुए हैं। जैसे सात रंग, सात सुर, सात दिन, सात ही है, सात के आधार से सब कुछ है। तो ये सात मूल गुण है जिनको कोर वैल्यूज कहते हैं, वो आत्मा के अंदर ही निहित है, ये बाहर से नहीं लेनी है, न ले सकते हैं, ये वस्तु व्यक्ति में नहीं है, ये आपके पास ही है। और उनको कैसे अनुभव करेंगे, चिंतन के माध्यम से, आप जैसा सोचेंगे वही अनुभव करेंगे। तो अब इसके साथ साथ आपको बताया, ये शरीर में टेम्पररी हमारी एड्रेस है, मैं कहां हूं एक सेकंड में मन बुद्धि चली जाए या भ्रिकुटी में, यही मेरा फोकस हो। जैसे कोई कहां रहता है तो तुरंत उसका वो घर याद आ जाएगा, अभी तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल में पता नहीं चलता वो जिससे हम बात करें वो कहां है। पहले जमाने में तो लैंडलाइन ज्यादा यूज होती थी, मोबाइल तो थे ही नहीं, तो घर का फोन नंबर अलग, ऑफिस का फोन नंबर अलग, दुकान का फोन नंबर अलग, अलग अलग रखना पड़ता था। तो जहां पर हमने फोन किया वहां मिल गया, माना दुकान में है या घर में या दफ्तर में जाए। परंतु आजकल तो मोबाइल है, हाथ में है, जहां भी घूमो। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है जब मोबाइल पर बात करते, आप कहां हो, कहां हो। अब वो झूठ बताए सच बताए उनके हाथ में है, क्योंकि बताएगा भी दिखाई तो देता नहीं। तो पहला प्रश्न ये कहां हो, तो आत्मा कहां है, ये अगर हम संकल्प करेंगे तो हम आत्मा को फोकस कर सकेंगे कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो हम कहते हैं जहां ये हठयोग करते हैं ना, कई आसन करते हैं, लास्ट में शवासन करते हैं, मानो डेथ पोस्चर, रिलैक्सेशन के लिए, मैं टांगे नहीं हूं, पैर नहीं हो, ये पेट नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, फिर यहां तक पहुंचते हैं, समझ से आज्ञा चक्र तक हम पहुंचेंगे और एक्टिवेट करेंगे उसको। राजयोग में हम कहते हैं आरंभ यहां से करो, ये अंतिम नहीं है, ये आदि है, क्योंकि इससे भी पार जाना है। मैं आत्मा हूं, भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं, हमने आरंभ भी यहां किया। और यहां से एनर्जी शरीर को दो, यहां से एनर्जी दो, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, अब नहीं चाहूं नहीं देखूं, मैं मालिक हूं इन आंखों की, जबरदस्ती मुझे देखना ही है, ये कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं सुनना है अवॉइड करना है, तो कान मेरे है ना, मैं नहीं चाहूं नहीं सुनू, सुनते हुए ना सुनू, देखते हुए ना देखो, मेरे हाथ में है। नहीं बोलना है तो चुप रह सकती हूँ, ये थोड़ी कि बोल दूंगी चुप नहीं रह सकती हूँ, मेरे हाथ में कंट्रोल में है, मेरा मुख मेरे हाथ ये सब मेरे कंट्रोल में है, ये सब वॉलंटरी एक्शंस है। इनवॉलंटरी एक्शन भी जो आपके शरीर में आपका डाइजेशन सिस्टम या जो कुछ भी है, वो भी अगर हमारी मानसिक स्थिति ऊंची है, वो भी आपका सब संयमित है, सब कुछ ऑर्डर में चलेगा। पर यहां ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये सब ऑर्डर बिगड़ जाता है। इसलिए सारे आपके कंट्रोल में हैं, परंतु उसके लिए आरंभ यहां से कीजिए। मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। फिर ये मेरा टेम्पररी घर है, फिर परमानेंट घर, चले जाओ अपने असली घर में, मन से चले जाओ। एक सेकेंड में मन की आंख उस परमधाम को देखे, अखंड ज्योति के महतत्व को देखे, और उस महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं, और उस घर से ही मैं संसार में आया हूं, मेहमान के रूप में हूं। ये संसार मेरा घर नहीं है, मैं तो आत्म पंछी हूं, मेरा घर तो इस पांच तत्वों से पार वो शांति का धाम है। और फिर उस घर में मैं परमात्मा को देखूं। जैसे आप किसी को याद करते हो तो कैसे याद करते हो, उसका स्वरूप सामने आता है, उसका घर सामने आता है, इसलिए कहाँ हो ये पूछना पड़ता है, वो बैकग्राउंड आप तैयार करते हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, घर में हो, रास्ते में हो, कहाँ हो, बस में हो, ट्रेन में हो। तो मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, मैं भी ज्योति बिंदु हूं, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, उनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि पिता है ना, और उस शिव बाबा की हम संतान है, वो भी ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, समानता है, दोनों की समानता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है। अब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी, परमात्मा तो निर्गुण निरंजन निराकार, नाम रूप रहित, नाम नहीं रूप नहीं गुण नहीं कुछ नहीं, नेमलेस फॉर्मलेस टेस्टलेस लेस लेस लेस। फिर कहेंगे जो बाकी बचे ना वो ईश्वर, जो बाकी बचे, व्हाट यू मीन बाकी बचे, नाक पकड़ना है तो सीधा पकड़ी ना, गोल गोल घुमा करके जो बाकी जहां तक हाथ पहुंचे वहां तक नाक पकड़ में आएगा क्या, सीधा पकड़ो ना। इसलिए नाम नहीं रूप नहीं गुण नहीं ये नहीं वो नहीं तो बाकी क्या। वास्तव में ये क्यों कहते हैं नेमलेस फॉर्मलेस, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्राकृतिक नहीं है, तो प्रकृति की जो भी चीजें उन सब से वो परे है ना, इसलिए कहना पड़ता है नेमलेस फॉर्मलेस। नाम भी जो है वो प्राकृतिक नहीं है, इंसान का नाम संज्ञावाचक है, गुणवाचक नहीं होता है। नाम होगा शांति, दिन भर लड़ती रहती होगी है? तो गुणवाचक कहाँ हुआ नाम, शांति नाम है और लड़ती है सारा दिन, अशांति फैलाती है, तो नाम भी बदनाम ही कर रही है ना, शांति नाम रख रही है। पर परमात्मा का नाम तो गुण कर्तव्य वाचक है, शिव का मतलब ही है कल्याण, शिव का मतलब है शांति, शिव का मतलब है पवित्रता। तो वो जब हम शिव कहते हैं तो हमारा अभिप्राय उस ज्योति स्वरूप से है, और आत्मा भी एक ज्योति है, परमात्मा भी ज्योति है, मैचिंग होगी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एक जैसा स्वरूप। आपको अगर कोई कहे कि आपकी शक्ल जैसा कोई एक और व्यक्ति है, आप आकर्षित होंगे कि नहीं उस व्यक्ति पर, देखूं तो मेरी शक्ल जैसा कौन व्यक्ति होगा, आप मिलना चाहेंगे कि नहीं उससे, नहीं मिलना चाहेंगे, मेरी शक्ल जैसा अच्छा कौन है वो, मैं देखूं तो सही। तो आत्मा और परमात्मा की शक्ल एक जैसी है, एक जैसा ही स्वरूप है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है नहीं, कई समझे आत्मा परमात्मा का अंश है, हम कहते हैं अंश का भी अर्थ समझो, अंश का मतलब ये नहीं है कि हम उसके टुकड़े हैं, अंश का मतलब है जो परमात्मा की गुणवत्ता है आत्मा की भी वही गुणवत्ता है, अंश का मतलब उस हिसाब से गुणवत्ता वही है, क्वालिटी इज द सेम, लेकिन संख्या में तो अंतर है ना। परमात्मा के जो गुण है वो सागर से भेंट किए जाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। आत्मा के लिए कहेंगे ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, तो गुणवत्ता वही है, गुण वही है, लेकिन परमात्मा के गुण वो तो दाता है। इसीलिए कह दिया आत्मा परमात्मा का अंश है, या आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि गुणवत्ता वही है। लेकिन हम उनके बच्चे हैं। बच्चे क्यों हैं? बच्चे का मतलब कोई पैदा किया आत्मा को इसलिए नहीं है, लेकिन परमात्मा हमको एक नया जन्म देते, आत्मा को नया जन्म। आत्मा का जन्म तो होता नहीं, पर कैसे नया जन्म दिया? जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न हो, होपलेस केस, कोई उम्मीद नहीं बचने की, और अचानक कोई ऐसी दवाई कहीं विदेश से मंगाई, ये कुछ दिया, और वो दवाई देते ही आशा की किरण बन जाए, आशा आ जाए, उम्मीदें आ गए कि ये बच सकता है, ऐसी दवाई किसी डॉक्टर ने दी, तो कहने में आएगा ना, डॉक्टर साहब आपने तो इसको नया जीवन दिया, नया जन्म दिया, ऐसे कहेंगे ना। तो परमात्मा को हम पिता किस हिसाब से कहते हैं? नया जन्म देते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है कि सब कब्र दाखिल हो जाती तो परमात्मा कब्र से निकालता है। अब कब्र से निकालने का तो प्रश्न ही नहीं है, इसलिए वो कब्र में डालते हैं। कब्र में से निकलने का तो प्रश्न ही कहाँ है? 1000 साल के बाद कब्र खोदो तो वैसा मिल जाएगा जो उसको वो निकलेगा? नहीं नहीं। पर आज आत्मा कब्र दाखिल हो गई है। कैसे? आत्मा अपनी शक्तियों को, गुणों को भूल गई है। अब उसको जागृत कौन करे? वो परमात्मा की कर सकता है। जैसे कोई बहुत बलशाली व्यक्ति हो पर सोया हुआ है, तो उसकी शक्ति भी सोई हुई है। इसीलिए कई लोग समझ इसको मारना है तो नींद में होगा उसको करेंगे, बेचारा नींद में था, जागे तो उस समय सामना करो। तो आत्मा की भी शक्ति आज सोई हुई है, क्योंकि आत्मा अपने आप को भूल गई है, अचेतन स्थिति है उस स्वरूप में। तो परमात्मा आकर के आत्मा को जगाते हैं, हे आत्मा पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। तो परमात्मा ने अपनी पहचान दी है कि जैसे तुम ज्योति बिंदु हो, मैं भी ज्योति बिंदु हूं, मैं भी परम धाम का वासी हूं। आत्मा परमात्मा का घर भी एक ही है, जो पिता का घर है वही बच्चों का घर है, हम एक ही घर के वासी है, एक जैसा ही स्वरूप है, एक जैसे ही गुण है। अब ये सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम, अब तक सेम था ही नहीं। हे प्रभु आप तो निर्गुण निरंजन निराकार, में फलाना नाम रूप धर्म जाति भाषा, बिल्कुल कंट्रास्ट, कैसे मिलन होगा। हे प्रभु आप तो परम पवित्र हो, मैं तो पापी कपटी गंदा बंदा, मिलन कैसे होगा? होगा? हे प्रभु आप तो ऊंचे से ऊंचा हो और मैं तो नीच से नीच हूं, तो वो कहां मैं कहां, मिलन कैसे होगा? मिलन के लिए फ्रीक्वेंसी मैच हो, वेवलेंथ मैच हो, समानता हो, इसलिए मिलन हुआ ही नहीं। अब परमात्मा ने मिलन की विधि बताई है। क्या विधि बताई है? वो भी हम देखेंगे कि परमात्मा को याद करने की विधि है आत्मा और परमात्मा में समानता। ये चिंतन करो, जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब आपका आकर्षण होगा उसकी तरफ। प्रकृति में हम देखते हैं जहां विरोधाभास है वहां आकर्षण है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो रिपेल होंगे। मैग्नेट में आप देखते हैं ना, नॉर्थ साउथ है, अगर नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाएंगे तो दूर जाएंगे, नॉर्थ को साउथ से मिला फटफट से चिपक जाएंगे। तो प्रकृति में विरोधाभास का आकर्षण है, परंतु आध्यात्मिकता में समानता का आकर्षण है। समान विचार, समान संस्कार, समान स्वभाव। इसलिए पति पत्नी बनने के लिए भी पहले योग देखते हैं, पर इनका विवाह करें, विवाह ये सफल होगा तो ज्योतिषी के पास जाकर जन्म पत्री दिखाएंगे, मैं जरा देखो तो इनका योग है। तो योग में क्या देखता है ज्योतिषी, इनके ग्रह मिल रहे हैं, संस्कार मिल रहे हैं, विचार मिल रहे हैं, तो ग्रह संस्कार ये जो भी कई बातें वो कुंडली में देखते हैं, इसमें अगर मिलाप है, मिलन है, तो कहेंगे योग है। योग मना मिलन। अगर एकदम टक्कर खाते हैं ग्रह, कई सब कुछ टक्कर खा रहा है, मिलन नहीं है, तो कहेंगे ये विवाह सफल नहीं होगा, है ना। तो परमात्मा से आत्मा का मिलन कैसे होगा, जब ये समानता का चिंतन करेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। फिर उसके बाद निवास का भी की भी समानता है। मैं एक ही घर के वासी है, आपका वही घर है। परमात्मा को ये मत कहो हे प्रभु मुझे बुला लो, इस संसार में जीना नहीं है, बस उठा लो। जरूरत क्या है ये कहने की, मन से चले जाओ ना, आपको कोई नहीं रोकेगा मन से जाने में। आपका ही वो घर है, घर जाने के लिए निमंत्रण थोड़ी चाहिए। आपको दफ्तर से घर जाना है, पत्नी को फोन करेंगे मैं आऊं घर, अरे क्यों नहीं आऊं, आपका ही घर है, है? पत्नी से को पूछेंगे मैं घर आऊं, वो कहेगी अभी मत आओ कल आना, ऐसे कहेगी क्या? अरे आपका ही घर है, फोन करके थोड़ी कोई निमंत्रण लेना होता है, आपका अधिकार है। तो परमात्मा के पास जाना मन से वो आपका अधिकार है, आप उसके बच्चे हो, आप उसी घर से आए हो। कई कहते हमने तो वो घर देखा नहीं, अरे कैसे नहीं देखा, वहीं से तो आए हो, नहीं आए हो उसी धाम से, कहां से आए हो इस संसार में, आत्मा कहां से आई, पैदा तो हुई नहीं है, भगवान ने भेजा तो कहां से भेजा, भगवान के पास जाना है, कहां जाना है, मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो कहां जाना है, इस संसार में तो नहीं है ना, ये तो कर्म क्षेत्र है। क्यों मुक्ति की इच्छा करते हैं, क्यों मोक्ष की इच्छा करते हैं, क्योंकि वहां पर न जन्म है, न मरण है, न कर्म है, न फल है, जो यहां है वो सब वहां नहीं है, इसलिए समझ से बस छूटे। तो आए भी तो वहां से, तो वो घर को तो आप जानते हैं, तभी तो चाहना रख रहे हैं। अगर जानते, अगर कभी गए नहीं थे वहां से, आए नहीं, तो चाहना क्यों रखेंगे जाने की, पता ही नहीं। फिर तीसरी समानता गुणों की समानता। तो परमात्मा से हम गुण मांगेंगे नहीं, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, नहीं, भाषा बदल जाएगी, शब्द बदल जाएंगे, शिव पिता आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, एक अवेयरनेस है, एक रियलाइजेशन है, मैं हूं शांति, तो मेरा ही स्वभाव है। आपको भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, आप मांगेंगे दूसरे से, वो चीज आपको मिलेगी, आप खाएंगे कहेंगे हाँ अभी भोजन किया, पेट भर गया, अभी कुछ और नहीं चाहिए, पानी पी लिया, अभी प्यास नहीं है। पर शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आप मांगेंगे कैसे मिलेगी, वो तो आपके पास ही है, वो तो अंदर ही है, बाहर से थोड़ी मिलेगी, प्रकृति से थोड़ी मिलेगी। इसलिए तीन बातों की समानता, स्वरूप में समानता, धाम की समानता, गुणों की समानता। अब इसका चिंतन, ये राजयोग की प्रथम अवस्था है। तो चार अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, ये एक चार पड़ाव के रूप में है, और राजयोग को हम एक यात्रा के साथ तुलना करते हैं, यात्रा है। इस यात्रा का की मंजिल कौन सी है, कहां तेरी मंजिल कहां है ठिकाना, तो राजयोग की रूपी यात्रा की मंजिल है कि जिस धाम से हम आए थे उसी धाम में लौट के जाना है, उसी घर से आए उसी घर में वापस जाना है। यात्रा तब पूरी होगी जब उस घर में वापस जाएंगे। तो राजयोग में कैसे उस धाम तक पहुंचना है, वो स्वरूप की अनुभूति मुझे यहीं करनी है। इसीलिए ये चार स्टेजेस है। पहली स्टेज है आत्मा परमात्मा का चिंतन, दूसरी है उस परमात्मा से रू रिहान। अब इस यात्रा के अंदर परमात्मा से मिलना है, ये अंतिम स्थिति नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है कि मिलना है, वो तो मेरे साथ ही है। अगर मिलना है माना जब तक मिले नहीं तब तक क्या वियोग है क्या, वो तो मेरा साथी है। परमात्मा को साथी बनाओ इस यात्रा में, साथी बना करके ले जाओ, उनके साथ आप जाओ, उनसे वहां जाकर के नहीं मिलना है, साथ में जाना है, उस घर में जाना है उनके साथ, वो आपके पास ही है, आपके साथ ही है। इसलिए उनसे बातें करो, क्या बातें करो, रू रिहान करो, रू की उस परम रू से वार्तालाप, क्योंकि वो आपका साथी है। इसलिए कहते जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। कोई तूफान आंधी आपको रोक नहीं सकता, आपका साथी बड़ा जबरदस्त है, भगवान आपका साथी है, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, क्योंकि वो साथी है हमारा, उसकी सुरक्षा का सदा हमें अनुभव होता रहे। इसलिए वो परमात्मा से रू रिहान करते रहो अंदर ही अंदर, अपने दिल में जगह दो उन्हें, दिल से ही दिल की बात होती है। और फिर उसके बाद एक एकाग्रता की अनुभूति होगी, वो तीसरी अवस्था है, और फिर वो एकाग्रता की स्थिति बनेगी, चिंतन समाप्त अनुभूति आरंभ, और फिर उस अनुभूति का चरम स्वरूप। अब इसको और आगे देखेंगे। पहली अवस्था जिसमें आत्मा और परमात्मा का चिंतन है, उसमें स्वयं को ज्योतिर्बिंदु आत्मा निश्चय कर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम रूप एवं गुणों का चिंतन करना। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति धाम का वासी हूँ। इसलिए जब शांति पाठ करते हैं तो तीन बार शांति शब्द कहते हैं, ओम शांति शांति शांति। हम यहाँ तीन बार ओम शांति कहते हैं, वहाँ ओम एक ही बार का, फिर शांति 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 तीन बार। हम क्यों तीन बार ओम शांति कहते हैं, क्योंकि उस अर्थ से हम कहते हैं, पहले मैं आत्मा शांत स्वरूप ओम शांति, फिर दूसरी बार ओम शांति मैं आत्मा उस शांति के सागर परमात्मा की संतान, फिर तीसरी बार ओम शांति मैं आत्मा उस शांति धाम का वासी। तो मेरा स्वभाव शांति, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा घर मेरा धाम शांति का धाम। अब जिसका अपना स्वभाव शांति, जिसका पिता शांति का सागर, जिसका घर शांति का धाम, वो कह सकता है मैं अशांत हूँ। कोई व्यक्ति के पास खूब जमीन जायदाद हो, खूब प्रॉपर्टी हो, खूब बैंक अकाउंट हो, उसका पिता भी बहुत धनवान है, उसके नाम पर भी बहुत प्रॉपर्टी है, खुद के नाम पर भी है, पिता के नाम की भी है, वो व्यक्ति कह सकता है क्या मैं तो कंगाल हूं? कह सकता है? अगर कहे मानो उसको पता ही नहीं है, इतना अनजान है वो। तो मैं अभी अगर ये कहता हूं मैं बहुत अशांत हूं, माना मुझे आत्मा का न आत्मा का ज्ञान है, न अपने धाम का ज्ञान है, न पिता परमात्मा का ज्ञान है, भिखारी हूं, भिखारी थोड़ी हूं, मैं तो अधिकारी हूं। इसलिए अधिकारी समझ करके गुणों का चिंतन करना, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान शांत स्वरूप हूं, एक सेकेंड में शांति आपके गले का हार बन जाएगी, आपके पास ही है। अब जो चीज मेरे पास है मैं उसको दुनिया भर में जाकर ढूंढू कहां मिलेगी? आपकी चाबियां आपके जेब में पड़ी हो और आप सारा घर टटोल लो, बिस्तरा कबर्ड सब, चाबियां कहां गई, चाबियां कहां गई, वो जेब में तो हाथ डाला ही नहीं। होता है कई बार, यहां तक भी होता है, अब मेरे हाथ में है और मैं हाथ में न देख करके सब जगह देख रही हूं कहां है, ऐसे भी होता है। तो मेरे पास ही है शांति और मैं ढूंढ रही हूं बाहर। इसलिए पहली अवस्था में ये चिंतन करना जरूरी है, ये आत्मा की अवेयरनेस है कि मैं अपने स्वरूप को पहचानूं। फिर परमात्मा तो मेरे साथ ही है, अब अंदर ही अंदर उनसे बातें करो। भगवान से बातें करते हो? जो करते हैं हाथ उठाएं, करते हैं? और जो माना जो हाथ नहीं उठाते माना नहीं करते हैं, हा? करते हैं नहीं करते हैं? सभी करते हैं, सभी करते हैं। हे भगवान शांति, तो ये भी तो भगवान से ही बात कर रहे हैं कि किससे कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, किसे कह रहे हैं हमें शाही भगवान शांति दो? उनको ही कह रहे हैं ना। लेकिन कई बार कहते हम तो भगवान से बातें कर, लेकिन उनका जवाब नहीं आता है। अब जवाब क्यों नहीं आता है, वो तो आप जब जैसे याद करोगे उसके पास आपकी याद पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, इंसान तक पहुंच सकती है, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती है क्या? तो कहते भाई जवाब तो आता नहीं। हम कहते जवाब क्यों नहीं आता, इसका भी कुछ कारण तो ढूंढो ना। मैं फोन लगा रही हूँ, फोन लगता नहीं, कारण क्या है? तो हो सकता है पहला कारण ये हुआ, कनेक्शन जुड़ा ही नहीं, तो कहां से बात होगी, कनेक्शन ही कहां जुड़ा। दूसरा कारण हो सकता है कि जब वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स होते हैं ना, तो अधिकतर क्या होता है, हमको रुकना पड़ता है, वन वे ट्रैफिक है, हम रुके तब उसका आवाज हम सुन सके, अगर हम भी बीच में बोलेंगे ना तो आवाज कट जाती है जो वो बोलता है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है, फिर हम कहते ओवर। हाँ, मैं पूरा वायरलेस में ऐसे ही होता है ना, आप स्टेशन पर जाइए, एयरपोर्ट पर जाइए, अब वो बोलेगा ओवर, फिर वो दूसरा को बोलेगा, बीच में हम नहीं बोलेंगे, पहले सुनना होता है, फिर ओवर करेंगे तब वो फिर बोलेंगे। कई बार हम टीवी पर देखते हैं, अभी वो बोल ही रहा है तो वो तो अभी सुन रहा है, अभी वो पूरा जब वो आवाज पहुंचे तब थोड़ी देर के बाद फिर वो बोलना शुरू करे, बीच में नहीं, तो टक्कर ही खाते रहते, आवाज को समझ में नहीं आएगा। तो हम ही बोले जा रहे हैं, उनका आवाज सुनने के लिए थोड़ा शांत तो हो जाओ, इतने स्वार्थी हम, भगवान ये दो वो दो वो दो वो दो वो दो वो दो, वो सुन भी रहा है या नहीं वही पता नहीं। और तीसरा कारण है कि वो सुन भी रहा है पर जानबूझ के जवाब नहीं दे रहा है। कई बार होता है ना, बच्चा कहेगा मम्मी मुझे ये चाहिए, टॉफी चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, मम्मी तो सुनती ही नहीं है, बहरी नहीं है, सुन रही है पर जवाब नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि देना नहीं है बच्चे को। क्या तो लॉलीपॉप टॉफी चॉकलेट बस यही खाता रहेगा, नहीं देना है, तो सुनती नहीं। तो भगवान भी हमारी कई बातें सुनता ही नहीं जानबूझ करके, क्योंकि बहुत स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए, एक तो केवल मांगते ही रहते हैं, फिर देखते ऐसे नहीं मिलता है तो भगवान से सौदा करने की कोशिश करते हैं, हे भगवान अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे ना तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो काम करेगा तब प्रसाद चढ़ाएंगे, नहीं किया तो नहीं चढ़ाएंगे, वो क्या रखेंगे, मानो इतने स्वार्थी हो गए हैं हम। तो जहां ये स्वार्थ है वहां प्रेम कहां है, प्रेम तो है ही नहीं, और जहां प्रेम नहीं है केवल स्वार्थ है तो वन साइडेड है, वो संबंध कायम नहीं रहेगा। जैसे पति पत्नी के बीच में पत्नी केवल मांगती रहे और खाली ये चाहिए चाहिए चाहिए, पति आखिर कहेगा मैं यानी इसीलिए हूं क्या, खाली तुमको देता ही रहूं, तुम भी कुछ करो ना, कुछ तो त्याग दोनों तरफ का होना चाहिए, खाली एक तरफ का थोड़ी, दोनों तरफ का चाहिए ना, तभी परस्पर संबंध में मधुरता आएगी, प्रेम आएगा। अब आत्मा का परमात्मा से प्रेम कैसे बढ़े, संबंध जोड़ने की विधि बताई समानता, पर प्रेम कैसे बढ़े, तभी रू रिहान सही होगी, प्रेम से, प्रेम की प्रेम से बात। प्रेम कब होता है, जब किसी के गुणों को हम पहचानते हैं, गुणों को पहचानेंगे, चाहे सुंदरता को पहचानते, जहां पर कोई न कोई विशेषता है वहां आकर्षण होगा। अब मान लो कोई सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है, अब थोड़ी सोचिए ये चमड़ी की सुंदरता कितने दिन की, चार दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, क्या इस चमड़ी पर हम आकर्षित होते हैं? ये सुंदरता कोई सच्ची सुंदरता थोड़ी, अंदर में क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, बाहर से सुंदर है, क्या क्या सुख मिलेगा? इसीलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कौन सी चीज आकर्षित करती है, पहले सत्यता आकर्षित करती है। अगर कोई व्यक्ति झूठा है कभी आकर्षित नहीं करेगा, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तो सत्यवाद, सत्य सच्चाई, एक बल एक भरोसा, एक अपने शब्दों पर टिकने वाला परमात्मा, वो सत्य है, अविनाशी है, सत्यम शिवम दाता है, वो कल्याणकारी है, कभी अकल्याण नहीं करेगा हमारा, और सुंदरम है, सर्व गुणों की सुंदरता है उनके अंदर। अब इनसे कोई और होगा जिनसे हम प्रीत रखेंगे, तो क्यों ना हम उनसे प्रीत रखें जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, और उसी का ही चिंतन, और फिर उसी रू रिहान में हम ऐसे खो जाएं जिसको कहते हैं समा गई आत्मा। तो रू रिहान माना सर्व संबंधों से परमात्मा की याद, वो माता पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, खुदा दोस्त भी है, साजन भी है, बच्चा भी है। भगवान को बच्चा बनाया कभी? बच्चा भी बना सकते हैं। माता पिता से लेना होता है, बच्चे को देना होता है, उसको बच्चा भी बना सकते हैं। इसका फिर विस्तार है, आप सेवा केंद्रों पर जाकर के सुनना, समझना और अनुभव करना, वो आगे का विषय है। लेकिन जैसे ही हम ये समझते हैं परमात्मा मेरे माता पिता है, शिक्षक है, सद्गुरु है, सब संबंध मेरे उनके साथ है, अब उस संबंध के आधार से हम रूढ़िहान करें, इसका बहुत विस्तार है। हर बार आप एक नवीनता का अनुभव कर सकते हो, कभी बोर नहीं होंगे, ये भी मेडिटेशन ही है। क्योंकि उस रूढ़िहान में हमें हमारे दिल की बातें सदा सुनते हैं, क्योंकि स्वार्थ रहित दिल की बातें, प्रेम की बातें हैं, वो क्यों नहीं सुनेंगे। इसलिए रूढ़िहान में प्रेम की बातें हो, उनके गुणों की बातें हो, उनसे संबंध की बातें हो, जो प्राप्ति दी है उसका धन्यवाद हो, बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, क्या कमी रखी है। दुनिया में इतने जिनको ये भी नहीं है जो हमारे पास है, हम क्यों और मांगे। इसलिए धन्यवाद दिल से निकले। अगर कोई कई कहते हैं हम भगवान से मांगते कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने भूले किए ना उसी की माफी मांगते हैं, माफ करो भगवान, माफ करो, माफ करो, माफ करो। लेकिन माफी भी तब वो करेगा माफ, जब फिर दोबारा भूल ना करो ना। ये थोड़ी है हम भूले करें, माफी मांगे, वो भूल हमारी माफ करता रहेगा। माफ भी कर रहा है ये क्या पता, कहीं हम धोखे में तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो कर्म किया वो फल तो मिलेगा किसी न किसी रूप से, तो भूले करो ही नहीं ना, क्यों करते हैं भूले। इसलिए माफी ही मांगनी है, उसकी बजाय अगर भूल हो गई तो प्रतिज्ञा करो दोबारा नहीं करेंगे, बस हिम्मत रखो दोबारा न करने की, तो मदद मिलेगी, फिर दोबारा नहीं होगी वो भूल। केवल माफ करो यही कहते रहना है क्या? एक ने तो यहां तक कहे, भगवान मैं तो भूलों का सागर हूं और तुम क्षमा के सागर हो, मैं तो भूले करता रहूंगा तुम क्षमा करते रहो। तो भगवान को काम दिया है क्षमा करने का और खुद को काम दिया है भूले करने का। आरती में आता एक शब्द, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान को काम दिया विषय विकार मिटाने का, पाप हरने का, और खुद को काम दिया काम वो विषय विकार करने का, पाप करने का। पाप करेंगे तभी तो हरे वो, तो हमको खुद को काम दिया करने का और उनको काम दिया हरने का। जैसे बच्चा गंदगी करे, मम्मी साफ करो, मम्मी कहेगी मैं तेरी नौकर हूं क्या, तुम करो साफ, सारा दिन तुम गंदगी कर लेते हो कमरे में, फिर कहते मम्मी साफ करो, तुमको करना है, गंदगी तुमने की तो साफ कौन करेगा, माँ करती रहेगी तो बच्चा तो वो तो स्पॉइल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि माँ ही सब कुछ करती रहती है। बच्चे को सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी, कि करते रहेंगे माताएं क्या करेंगे, सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे। तो फिर तो भगवान भी तो कहेगा ना, भूले करते क्यों। इसीलिए परमात्मा अगर भूल हो गई तो आप बताओ, ईश्वर को जरूर बताओ, छिपाओ नहीं, ईश्वर से छिप नहीं सकती कोई बात, इंसान से भले छिपा सकते हो, उनको सच बता करके क्षमा मांग लो भले सच्ची दिल से, पर एक प्रतिज्ञा भी साथ साथ करो, मैं फिर से नहीं करूंगा, अपने अंदर में ये विश्वास रखो। और जो ईश्वर को बता दिया वो आपकी बात गोपनीय रखेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। इंसान को बताएंगे तो वो गोपनीय रखे ये जरूरी नहीं है, इसीलिए उनसे ही बातें करो, वो आपकी बातें गोपनीय रखेगा और आपको शक्ति भी देगा। पर हिम्मत आपकी चाहिए, आपका अंदर में वो विश्वास चाहिए, और फिर भय मुक्त भी आप बने। हाँ, क्योंकि वो हमको कोई कष्ट नहीं देते। कई समझते हैं गॉड फियरिंग बनना है, हम डरते रहना है भगवान से, क्योंकि वो हमें सजा देगा। पर भूल करो ही नहीं तो सजा क्यों मिलेगी, भूल करते इसलिए सजा का डर लगता है। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसीलिए भय मुक्त भी बनो, डोंट बी गॉड फियरिंग बट बी गॉड लविंग, प्रेम करना सीखो ईश्वर से। प्रेम के कारण कोई बुरा कर्म गलत काम मत करो। एक होता है, एक मिसाल देते भी, किसी का पिता जज है और वो चोरी करता है बेटा, और उस जज के सामने आता है, पर चोरी करते समय सोचता है कोई बात नहीं, मेरा पिता तो जज है, पकड़ा जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे छुड़वा देगा। और दूसरा बेटा जो समझता मेरा पिता तो जज है, मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूं जो पिता भी मेरे मुझे देख के शर्मिंदा हो जाए कि ऐसा मेरा बेटा है। तो पिता का नाम रोशन करना है या हमें सोचना कोई बात नहीं भगवान क्षमा कर देगा, हाँ क्या सोचेंगे, रोशन करना है। उसके लिए हम ये सोचे मैं किसका बच्चा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, मुझे उस पिता का शो करना है। और फिर वो सुरक्षा भी देता है, वो हमसे निश्चल प्रेम करता है। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। परमात्मा कहते हैं प्रेम का प्यासा है, भावना का भूखा है, पर वो प्रेम स्वार्थ के रूप में बदल गया, इसलिए संबंध टूट गया, इसलिए मन नहीं जाता ईश्वर में और वो शक्ति भी नहीं मिलती। तो वे हमें शक्ति देते रहते हैं, सिर्फ उनकी याद में रहो, बस मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो जैसे जैसे परमात्मा से हम इस प्रकार की रूढ़िहान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, अपने अंदर में संकल्प करते हैं, अपने आप को शुद्ध बनाते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन इतना स्वच्छ हो जाता है जो एकाग्रता की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि मैचिंग हो गया। और जैसे एकाग्रता की अनुभूति होती जाती है, हम उस एक एक गुण की गहराई में जा सकते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में समा गई। और जैसे समाते जाते ये अनुभव होता है एकाग्रता की, और उस एकाग्रता की अनुभूति में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस की जाए, तो फोकल पॉइंट पर जहां केंद्र है वहां कागज रखा जाए, तो उस सूर्य का प्रतिबिंब जो कागज पर पड़ेगा वो इतना शक्तिशाली होता है कि क्या होता है उस समय, वो कागज जलने लगता है। कैसे जलता है? वैसे ही सूरज की किरण कोई कागज को जलाएगी नहीं, परंतु उन किरणों को केंद्रित किया, और केंद्रित होने से उनकी शक्ति हजार गुना बढ़ जाती है, और परिणाम स्वरूप वो जो सूर्य का प्रतिबिंब इतना छोटा बनता है, सूर्य इतना विशाल, उसका प्रतिबिंब इतना सूक्ष्म कागज पर दिखाई देता है और वहीं कागज जलने लगता है। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उस सर्वशक्तिवान की शक्ति हम अनुभव करते हैं, और उसी अनुभूति में आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे एक जैसे सोना, उसमें खाद पड़ी हुई है, उसका शुद्ध उसको शुद्ध करने का तरीका क्या है? आग में डालो। आग में डालने से क्या होगा? हाई टेम्परेचर चाहिए, तो जो और धातु उस अशुद्ध सोने में पड़े वो जल्दी पिघलते जाएंगे, वो निकलते जाएंगे, क्योंकि सोने का जो मेल्टिंग प्वाइंट है वो बहुत हाई है, बाकी जितने भी है मेल्टिंग प्वाइंट वो सब सोने से कम है, इसलिए वो निकलते जाएंगे और सोने का शुद्धिकरण होगा। मैं विज्ञान की छात्रा रही हूं, इसलिए इस प्रकार की मैं मिसाल देती हूं। तो परमात्मा भी कहते हैं तुम उस योग की अग्नि में तप जाओ। ये तपस्या माना तपना, योग की अग्नि है ये, जिसमें ये पापों का भस्म होना सहज हो जाएगा। और इसी के आधार से हम अनुभूति करते हैं कैसे परमात्मा की वो ऊर्जा आत्मा में प्रवाहित होती और हम संपन्न बनते हैं। जो परमात्मा के गुण आत्मा के भी गुण, वही, और उसी को कहते आत्मा सो परमात्मा। हम आत्मा कोई परमात्मा बन नहीं सकती, परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पद नहीं है। कोई प्रेसिडेंट बन जाए, वो उसकी 5 साल का टेन्योर है तो उतर जाएगा, दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा, पर आपका पिता सदा ही आपका पिता है। आप भले अपने बच्चों के पिता बनेंगे, पर अपने पिता के आगे तो आप बेटा ही हो कि नहीं, कि पिता के आगे भी आप पिता हो, क्या हो, बेटा ही हो। तो हम सदा ही बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा के गुणों को हम संपूर्ण रूप में अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। और वो अनुभूति अगर एक सेकंड की भी रही ना, एक सेकंड, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि उसी एक सेकंड की अनुभूति में आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, वो ऊर्जा आपको महसूस होगी, अंदर की शक्ति आपकी बढ़ेगी। और इसी शक्ति के आधार से कैसे आपका परिवर्तन आएगा, क्योंकि आत्मज्ञान धारण किया, उस आत्मज्ञान से आत्मचिंतन किया, फिर निरीक्षण किया कि मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं अशांत कैसे हो सकता हूं। निरीक्षण करने के बाद विश्लेषण किया, फिर संयम किया, नहीं मैं अशांत नहीं हूं। फिर उसके बाद उसका बोध हुआ कि सचमुच मैं तो शांत स्वरूप हूं, फिर परिवर्तन होगा, कभी भी मन अशांत नहीं होगा, मैं कौन हूं ये याद रहेगा। तो स्मृति में परिवर्तन, दृष्टि में परिवर्तन, कृति में, स्थिति में, जिससे वातावरण में परिवर्तन होगा तो विश्व में भी परिवर्तन आएगा। कई कहते हैं कि हमारे एक के बदलने से क्या संसार में परिवर्तन आएगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति शराबी है, क्रोधी है, बहुत ही दुख देता है, सारा परिवार दुखी हो जाता है एक व्यक्ति के कारण। सेब का एक टोकरा है, एक सड़ा हुआ सेब डालते हैं तो क्या हो जाता है, सारे सेब सड़ जाते हैं, वो सड़े हुए का वाइब्रेशन मिला। अब उसके विपरीत एक अच्छा व्यक्ति होगा तो वो सारे परिवार को अच्छा बना सकता है, बना सकता है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बीच में क्या है, स्व परिवर्तन से परिवार परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। अब ये होगा जरूर, तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करेंगे, कैसे अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में रहना है, चिंतन करना है कि मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, उस परम पवित्र पिता की संतान मैं, आत्मा भी पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, परमात्मा भी परम धाम के निवासी है, वो शांति के सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ। ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि अब इस परम धाम में पहुंच जाओ, परमात्मा का, परम धाम का वो प्रकाश भी सुनहरा लाल प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित धाम है, वो स्व प्रकाशित सुनहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा के धाम का अनुभव है। और उसी धाम में मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सम्मुख हूं, तो अंतर में खुशी लाइए, खुशी, बहुत महान कार्य करने आप बैठे हो, बोर होने की तो बात ही नहीं है, कमाई करेंगे, इसमें कमाई है, कमाई होती तो कितनी खुशी होती है, स्वच्छ होते कितनी खुशी होती है, किसी महान व्यक्ति से मिलते हैं कितनी खुशी होती है। अब इनसे महान कौन होगा, ये तो परम पवित्र परमात्मा है, उनसे आत्मा का मिलन, जिनसे आत्मा को इतनी प्राप्ति होती है, इतनी कमाई है, जन्म जन्म की कमाई है, वो हम आत्मा करें। तो चलिए सीधा बैठेंगे और अंतर में खुशी और नशा लाएं। नाम खुमारी नानिका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसी खुमारी दिन रात चढ़ी रहे उस परमात्मा की याद में। सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के, वो नारायणी नशा, वो ईश्वरीय नशा, मैं किसकी संतान हूं, ये बुद्धि में आ जाए। और वो नशा अगर चढ़ जाए तो बाकी सब नशे फीके, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो सीधा बैठेंगे, एकाग्र होकर बैठें, अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? अंतरात्मा उत्तर देगी, आप खुद ही उत्तर देंगे, क्योंकि अब आपको पता है आप कौन है। मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूं। एक चमकता हुआ सितारा हूं। अजर अमर अविनाशी हूं। भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मन और बुद्धि से, इस देह और देह की दुनिया से, प्रकृति से, पंच तत्वों से, मन बुद्धि के पंखों द्वारा उड़ान भरें, और पहुंच जाएं अपने वतन में, पांच तत्वों से पार, आवाज से दूर, प्रकृति के आकर्षण से पार, वो शांति का धाम जो मुझ आत्मा का अपना ही घर है, एक बेहद ब्रह्म महतत्व, अखंड ज्योति का महतत्व, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, बेहद शांति ही शांति है। यह मुझ आत्मा का ही निज धाम है, मुक्ति का धाम है, परम धाम है। मुझ आत्मा का मूल वतन है, जहां मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सम्मुख हूं। जो रूप में ज्योति बिंदु और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है। सर्व गुणों का सागर है, परम पवित्र है। जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है, प्यारे शिव पिता, आप ही मेरे मात पिता हो। आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा, आपकी संतान, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ, खो जाइए उस शांति के सागर में। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के धाम में, शांति के सागर में खो जाऊं। मन शांत हो गया, शांति की शक्ति स्वयं में भरते जाए, एकाग्रता की अनुभूति कर, उस बिंदु में सिंधु को पहचान कर, शिव पिता आप सर्वशक्तिमान हो, आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद। खो जाइए शिव बाबा के प्रेम में, उस सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों में। शांत स्वरूप बन, शांति के सागर में खो जाए। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा अपने आप को पहचान चुकी हूँ। पिता परमात्मा से संबंध जोड़कर धन्य बन गई, जो पाना था वो सब कुछ पा लिया। जो चाह थी पार ब्रह्म में बसने वाले परमेश्वर को पाने की, वो भी पा लिया। उनका सानिध्य पाकर मैं धन्य हो गई। अगर मन कहीं भटक रहा हो, फिर से याद दिलाओ मैं कौन, मैं किसकी संतान, मैं कहाँ का रहवासी। और महसूस करो परमात्मा का वही सानिध्य जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान परम पवित्र। परम आत्मा। जिनकी मैं अमर संतान हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। इसी शक्ति को स्वयं में भरकर वापस लौटे। फिर से इसी कर्म क्षेत्र पर अपने साकारी शरीर में भ्रकुटी के बीच विराजमान हो जाइए और फिर से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करें, पर एक नई सोच के साथ, नई अनुभूति के साथ, एक उपरांता के साथ, परमात्म शक्ति के साथ। तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होगा, कुशल होगा, सफल होगा।